अध्ययन लेख 46। इस लेख का अध्ययन 13 से 19 जनवरी के दौरान किया जाएगा। विषय: क्या आपके विश्वास की बड़ी ढाल अच्छी हालत में है? ये लेख इफिसियों 6 के 16 पर आधारित है, जहां लिखा है, विश्वास की बड़ी ढाल उठा लो। गीत 119। हमारा विश्वास पक्का हो। लेख की एक झलक। युद्ध के दौरान सैनिक हिफाजत के लिए अपनी ढाल हमेशा अपने साथ रखते थे। हम मसीहों का विश्वास भी एक ढाल की तरह है, जो हमारी रक्षा करता है। जिस तरह एक ढाल को अच्छी हालत में रखना जरूरी होता था, उसी तरह हमें भी अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि हम विश्वास की बड़ी ढाल को कैसे अच्छी हालत में रख सकते हैं। पैराग्राफ 1 और 2। सवाल क: जैसे इफिसियों 6 के 16 में बताया गया है, हमें विश्वास की बड़ी ढाल की जरूरत क्यों है? सवाल ख: हम किन सवालों के जवाब देखेंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपके पास विश्वास की बड़ी ढाल है, तो आप क्या कहेंगे? बेशक आप हां कहेंगे। इफिसियों 6 के 16 में लिखा है, इन सब के अलावा विश्वास की बड़ी ढाल उठा लो, जिससे तुम शैतान के सभी चलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। लेकिन हमें इस ढाल की जरूरत क्यों है? जिस तरह एक बड़ी ढाल एक सैनिक के लगभग पूरे शरीर की हिफाजत करती है, उसी तरह विश्वास की ढाल भी हमारी रक्षा करती है। ये ढाल इस दुष्ट दुनिया में फैली अनैतिकता, हिंसा और दूसरे बुरे कामों से हमारी हिफाजत करती है। हम जानते हैं कि हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं और इस दौरान हमारे विश्वास की परख होती रहेगी। ऐसे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे विश्वास की ढाल मजबूत है या नहीं? हम कैसे इसे अच्छी हालत में रख सकते हैं? आइए इन सवालों के जवाब देखें। अपनी ढाल की अच्छी तरह जांच करें। पैराग्राफ 3। सवाल: सैनिक समय समय पर क्या करते थे और क्यों? बाइबल के जमाने में सैनिकों की ढाल पर आमतौर पर चमड़ा लगा होता था। सैनिक समय समय पर ढाल पर तेल लगाते थे, ताकि चमड़ा खराब ना हो और ढाल पर लगे धातु के टुकड़े जंग ना खाएं। जब एक सैनिक की ढाल को मरम्मत की जरूरत होती थी, तो वो बिना देर किए उस पर काम करता था। इस तरह वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस उदाहरण का हमारे विश्वास से क्या नाता है? पैराग्राफ 3 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक। युद्ध के बाद सैनिक हमेशा अपनी ढाल की मरम्मत करते थे। पैराग्राफ 4। सवाल क: हमें अपने विश्वास की जांच क्यों करते रहना चाहिए? सवाल ख: हम ये कैसे कर सकते हैं? हमें भी समय समय पर अपने विश्वास की ढाल की जांच करनी चाहिए और उसे अच्छी हालत में रखना चाहिए। इस तरह हम हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। बेशक हम सचमुच की लड़ाई तो नहीं लड़ते, मगर मसीही होने के नाते हमारी लड़ाई दुष्ट स्वर्गदूतों से है। विश्वास की ढाल को अच्छी हालत में रखने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। कोई और हमारे लिए ये काम नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते हैं ताकि आजमाइशें आने पर हमारा विश्वास ना डगमगाए? सबसे पहले हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। फिर हमें उसके वचन की जांच करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम उसके मुताबिक विश्वास जाहिर कर रहे हैं या नहीं। बाइबल में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बल्कि पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन 3:5-6। इन बातों को ध्यान में रखकर एक ऐसी समस्या के बारे में सोचिए जो हाल ही में आपके सामने खड़ी हुई थी। हो सकता है आपको पैसों की बड़ी दिक्कत थी। क्या उस वक्त आपको इब्रानियों 13:5 का ख्याल आया, जहां यहोवा कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा? क्या इस वादे से आपका भरोसा बढ़ा कि यहोवा आपको संभालेगा? अगर हां, तो इसका मतलब है कि आपके विश्वास की ढाल मजबूत है। पैराग्राफ 5। सवाल: अपने विश्वास की जांच करने पर शायद हमें क्या पता चले? जब हम अपने विश्वास की जांच करते हैं, तो ये जानकर शायद हमें हैरानी हो कि हमारा विश्वास कमजोर होने लगा है। इसकी वजह चिंताएं, झूठ या निराशा हो सकती है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप किस तरह अपना विश्वास मजबूत कर सकते हैं? चिंता, झूठ और निराशा से अपनी हिफाजत करें। पैराग्राफ 6, समझाइए कि कुछ तरह की चिंताएं अच्छी क्यों होती हैं। कुछ चिंताएं अच्छी होती हैं, जैसे हमें यहोवा और यीशु को खुश करने की फिक्र होती है। अगर हमने कोई बड़ा पाप किया हो तो हमें ये चिंता सताती है कि हम यहोवा के साथ अपना रिश्ता कैसे ठीक करें। इसके अलावा हम अपने जीवन साथी को खुश करने की फिक्र में रहते हैं, या फिर हमें अपने परिवार वालों और मसीही भाई बहनों की खैरियत की चिंता होती है। पैराग्राफ 7, सवाल क, बहुत ज्यादा चिंता करने से हमारा विश्वास कैसे कमजोर पड़ सकता है? सवाल ख, जैसे नीतिवचन 29 के 25 में बताया गया है, हमें इंसानों से क्यों नहीं डरना चाहिए? वहीं दूसरी तरफ, बहुत ज्यादा चिंता करने से हमारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है। जैसे हो सकता है कि हम हर वक्त ये चिंता करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। इस चिंता को दूर करने के लिए शायद हम इन चीजों को जुटाने में ही अपना पूरा ध्यान लगा दें और धीरे धीरे हमारे अंदर पैसे का प्यार बढ़ने लगे। अगर ऐसा होता है तो यहोवा पर हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाएगा और उसके साथ हमारी दोस्ती टूट जाएगी। इसके अलावा शायद हमें ये चिंता भी खाई जाए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम नहीं चाहते कि वो हमारा मजाक उड़ाएं या हमें सताएं। इस वजह से शायद हम यहोवा से डरने के बजाय इंसानों से डरने लगे। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए हमें यहोवा से विश्वास और हिम्मत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करनी चाहिए। नीतिवचन 29 के 25 में लिखा है, इंसान का डर एक फंदा है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसकी हिफाजत होती है। पैराग्राफ 8, सवाल, जब कोई हमसे झूठी बातें कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? शैतान झूठ का पिता है और वो यहोवा और भाई बहनों के बारे में झूठ फैलाता है। यूहन्ना 8:44, इसके लिए वो उन लोगों का इस्तेमाल करता है जो परमेश्वर से बगावत करते हैं। ये लोग वेबसाइट, टीवी और अखबारों पत्रिकाओं के जरिए यहोवा के संगठन के बारे में या तो झूठी बातें फैलाते हैं या सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। ये झूठी बातें शैतान के उन जलते हुए तीरों में से हैं जो वो हम पर चलाता है। इफिसियों 6:16, अगर कोई हमसे इस तरह की बातें करता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी नहीं सुननी चाहिए, वो इसलिए कि हम यहोवा और अपने भाइयों पर विश्वास करते हैं। दरअसल हमें उन बगावती लोगों से कोई नाता नहीं रखना चाहिए। हमें किसी भी विषय पर या किसी भी वजह से उनसे बहस नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे हमें ये जिज्ञासा क्यों न हो कि फलां विषय पर उनकी सोच क्या है। पैराग्राफ 9, सवाल, निराशा की भावनाओं का हम पर क्या असर हो सकता है? निराशा की भावनाएं भी हमारा विश्वास कमजोर कर सकती हैं। कभी कभी हम अपनी परेशानियों की वजह से निराश हो जाते हैं। ये सच है कि हमें इन परेशानियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम दिन रात इन्हीं के बारे में सोचते रहें। अगर हम ऐसा करें तो उन बढ़िया वादों से हमारा ध्यान भटक जाएगा जो यहोवा ने हमसे किए हैं। निराशा की भावनाएं हम पर इस कदर हावी हो सकती हैं कि हम हिम्मत हार बैठें और यहोवा की सेवा करना छोड़ दें, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो। पैराग्राफ 10, सवाल, एक बहन की चिट्ठी से हम क्या सीखते हैं? अमेरिका में रहने वाली एक बहन का उदाहरण लीजिए जिसके पति बहुत बीमार रहते हैं। ध्यान दीजिए कि बहन किस तरह अपने पति की देखभाल करते हुए भी अपना विश्वास मजबूत रख पाती है। उसने विश्व मुख्यालय को एक चिट्ठी में लिखा, हमारे हालात ऐसे हैं कि कई बार हम तनाव से गुजरते हैं और निराश हो जाते हैं, फिर भी हम अपनी आशा पर ध्यान लगाए रख पाते हैं। मुझे अपना विश्वास मजबूत करने के लिए जब जब सलाह और हिम्मत की जरूरत पड़ी, यहोवा ने मेरी मदद की। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। सच कहूं तो यहोवा की मदद से ही हम उसकी सेवा में लगे रह पाए हैं और उन परीक्षाओं का सामना कर पाए हैं जो शैतान हम पर लाता है। बहन की बातों से हम सीखते हैं कि हम निराशा की भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। वो कैसे? हमें याद रखना चाहिए कि जिन मुश्किलों का हम सामना करते हैं वो दरअसल शैतान की वजह से हैं। हमें इस बात का भी भरोसा रखना चाहिए कि यहोवा मुश्किल घड़ी में हमें दिलासा देगा। यही नहीं, उसने हमारा विश्वास मजबूत करने के लिए जो भी इंतजाम किए हैं उनकी हमें कदर करनी चाहिए। पैराग्राफ 11। सवाल, हमारा विश्वास मजबूत है या नहीं ये जानने के लिए हम खुद से क्या पूछ सकते हैं? क्या आपके विश्वास की ढाल अच्छी हालत में है या क्या उसे मरम्मत की जरूरत है? ये जानने के लिए खुद से पूछिए, पिछले कुछ महीनों में क्या मैं बहुत ज्यादा चिंता करने से खुद को रोक पाया हूं? क्या मैंने परमेश्वर से बगावत करने वालों की झूठी बातें सुनने और उनसे बहस करने से इनकार किया है? क्या मैं निराशा की भावनाओं से लड़ पाया हूं? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो इसका मतलब है कि आपके विश्वास की ढाल अच्छी हालत में है। लेकिन सावधान रहिए, शैतान के पास और भी कई हथियार हैं जिनसे वो आप पर वार कर सकता है। आइए उनमें से एक पर ध्यान दें। पैराग्राफ 8 और 11 से संबंधित तस्वीर के बारे में। जब टीवी पर यहोवा के साक्षियों के बारे में झूठी खबर आती है जो परमेश्वर से बगावत करने वाले लोग फैलाते हैं, तो एक साक्षी परिवार तुरंत टीवी बंद कर देता है। बाद में पारिवारिक उपासना के दौरान पिता बाइबल की मदद से अपने परिवार का विश्वास मजबूत करता है। चित्र शीर्षक, क्या आपके विश्वास की बड़ी ढाल अच्छी हालत में है? सुख सुविधा की चाहत से अपनी हिफाजत करें। पैराग्राफ 12। सवाल, सुख सुविधा की चाहत क्यों हमारे लिए खतरा बन सकती है? सुख सुविधा की चाहत से हमारा ध्यान बट सकता है और हमारा विश्वास कमजोर पड़ सकता है। प्रेषित पौलुस ने कहा, कोई भी सैनिक खुद को दुनिया के कारोबार में नहीं लगाता ताकि वह उसे खुश कर सके जिसने उसे सेना में भर्ती किया है। दूसरा तिमुथियुस 2:4। रोमी सैनिकों को फौज में सेवा करने के अलावा कोई और काम करने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई सैनिक इस कानून को नहीं मानता तो अंजाम क्या होता? पैराग्राफ 13। सवाल, सैनिक खुद को किसी कारोबार में क्यों नहीं लगाते थे? जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, सुबह का वक्त है और सारे सैनिक तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन एक सैनिक शहर गया हुआ है। उसने वहां खाने की दुकान लगाई है और उसका पूरा दिन वहीं निकल जाता है। शाम को बाकी सैनिक अपने हथियारों की जांच करते हैं और अपनी तलवार की धार तेज करते हैं, मगर वो अगले दिन दुकान लगाने की तैयारी करता है। अगले दिन सुबह सुबह दुश्मन अचानक सैनिकों की छावनी पर हमला बोल देते हैं। आपको क्या लगता है, कौन दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होगा और अपने सेनापति को खुश करेगा? अगर आप वहां होते तो आप किस सैनिक के साथ सुरक्षित महसूस करते? उसके साथ जो युद्ध के लिए तैयार है या उसके साथ जिसका ध्यान बटा हुआ है? पैराग्राफ 14। सवाल, मसीह के सैनिक होने के नाते क्या बात हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? हम उन अच्छे सैनिकों की तरह होना चाहते हैं और मुख्य लक्ष्य पर अपना ध्यान लगाए रखना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है अपने सेनापति यहोवा और मसीह को खुश करना। उनकी मंजूरी पाना सबसे ज्यादा मायने रखता है, इस दुनिया की चीजों से भी ज्यादा। इस वजह से हम अपना समय और अपनी मेहनत यहोवा की सेवा करने और विश्वास की ढाल और दूसरे हथियारों को सही हालत में रखने में लगाते हैं। पैराग्राफ 15। सवाल, पौलुस हमें किस बात से खबरदार करता है और क्यों? मसीह के सैनिक होने के नाते हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वो इसलिए कि प्रेषित पौलुस हमें खबरदार करता है। जो लोग हर हाल में अमीर बनना चाहते हैं वो विश्वास से भटक जाते हैं। पहला तिमुथियुस 6:9-10। यहां शब्द भटक जाते हैं से इशारा मिलता है कि हमारा ध्यान जरूरी बातों से हटकर उन चीजों को बटोरने में लग सकता है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे हमारे मन में मूर्खता से भरी और खतरनाक ख्वाहिशें पैदा हो सकती हैं। हमें अपने दिल में ऐसी ख्वाहिशों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इनके जरिए शैतान हमारा विश्वास कमजोर कर सकता है। पैराग्राफ 16। सवाल: मरकुस 10 के 17 से 22 में बताई घटना को ध्यान में रखकर हमें खुद से कौन से सवाल करने चाहिए? मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसे हैं और हम जो चाहे खरीद सकते हैं। ऐसे में जब हम कोई चीज खरीदते हैं, फिर चाहे हमें उसकी जरूरत ना हो, तो क्या इसमें कोई बुराई है? जरूरी नहीं, लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारे पास इतना वक्त और ताकत है कि हम खरीदी हुई चीजें इस्तेमाल कर सकें और उनका ध्यान रख सकें। क्या यह खतरा हो सकता है कि हमें अपनी चीजों से बहुत लगाव हो जाए? कहीं हम उस नौजवान की तरह तो फैसला नहीं कर रहे हैं जिसने यीशु का न्योता ठुकरा दिया और यहोवा की सेवा में आगे बढ़ने का मौका गंवा दिया? मरकुस 10 के 17 से 22 में लिखा है, जब वो निकलकर अपने रास्ते जा रहा था तो एक आदमी दौड़कर आया और उसके सामने घुटनों के बल गिरा और उसने पूछा, अच्छे गुरु, हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उसे कहा, तू मुझे अच्छा क्यों कहता है? कोई अच्छा नहीं है सिवा परमेश्वर के। तू तो आज्ञाएं जानता है, खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, किसी को न ठगना और अपने पिता और अपनी मां का आदर करना। उस आदमी ने कहा, गुरु, ये सारी बातें तो मैं बचपन से मान रहा हूं। यीशु ने प्यार से उसे देखा और कहा, तुझमें एक चीज की कमी है, जा और जो कुछ तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, क्योंकि तुझे स्वर्ग में खजाना मिलेगा, और आकर मेरा चेला बन जा। मगर इस बात पर वो उदास हो गया और दुखी होकर चला गया, क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। अगर हम इस नौबत से बचना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को सादा रखें और यहोवा की मर्जी पूरी करने में समय दें और मेहनत करें। विश्वास की ढाल को हमेशा साथ रखिए। पैराग्राफ 17। सवाल: हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लड़ाई शैतान और उसके दुष्ट दूतों से है, और हमें हर दिन यह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विश्वास की अपनी ढाल को अच्छी हालत में रखने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। हमारे भाई बहन हमारे लिए ये काम नहीं कर सकते। पैराग्राफ 18। सवाल: पुराने जमाने में सैनिक अपनी ढाल को हमेशा अपने साथ क्यों रखते थे? पुराने जमाने में एक सैनिक को युद्ध में साहस दिखाने के लिए सम्मानित किया जाता था, लेकिन अगर वो अपनी ढाल के बगैर घर लौटता तो ये उसके लिए बेइज्जती की बात होती। रोमी इतिहासकार टैसिटस का कहना था, एक सैनिक के लिए इससे बड़े अपमान की बात और कुछ नहीं कि वो युद्ध के मैदान में अपनी ढाल छोड़कर आए। यही वजह है कि सैनिक किसी भी हाल में अपनी ढाल को हाथ से जाने नहीं देते थे, उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। पैराग्राफ 19। बताइए कि हम विश्वास की ढाल को कैसे हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। हम विश्वास की ढाल को कैसे हर वक्त अपने साथ रख सकते हैं? हमें नियमित तौर पर मसीही सभाओं में हाजिर होना चाहिए और लोगों को यहोवा के नाम और उसके राज के बारे में गवाही देनी चाहिए। इसके अलावा हमें हर दिन बाइबल पढ़नी चाहिए और यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसमें दी बातों पर चलने के लिए हमारी मदद करे। जब हम ये सब करते हैं तो शैतान का कोई भी हथियार हमें हमेशा का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विश्वास की बड़ी ढाल हमारी रक्षा करेगी। हम भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पूरी हिम्मत के साथ डटे रहेंगे। अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए हम हर दिन लड़ते रहेंगे और उसमें जीत हासिल करते जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब यीशु शैतान और उसका साथ देने वालों को युद्ध में हराएगा। उस वक्त यीशु के पक्ष में खड़े होना क्या ही सम्मान की बात होगी। पैराग्राफ 19 से संबंधित तस्वीर का शीर्षक: एक बहन बाइबल पढ़ती है, नियमित तौर पर सभाओं में जाती है और जोश के साथ प्रचार करती है। इस तरह वो विश्वास की बड़ी ढाल को हमेशा अपने साथ रखती है। हम आगे बताई बातों से अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? बहुत ज्यादा चिंता करना, झूठ और निराशा, सुख सुविधा की चाहत। गीत 118, हमारा विश्वास बढ़ा। लेख समाप्त।